ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै वञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृतासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव श्रीति तन्मयतया सर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतो तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं मां चरणं भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताक्ष कामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते। श्रीमद्भागवतम 44 अध्याय। कल ये बतलाया, पहले बतलाया था स्ववासना के संबंध में। उच्च कोटि के भक्त लोग अपनी वासना को तुम्हारे इच्छाएं मोर इच्छाए मिशाइनु, ये पढ़ा है कहीं? भक्ति विनोद तबे आपने भूली लू, तुम्हारी इच्छाए मोर इच्छाए मिशाई लू। माने क्या? इसका नाम है सवासना। भरत महाराज हिरण में अपनी वासना को बराबर कर दिया था, इसलिए हिरण होकर के आए। भक्त लोग प्रारंभ से जो रागानुगामयी हैं, अपनी वासनाओं को अपने अभिलषित कृष्ण परिकरों के साथ में समान भाव को ला देते हैं, इसलिए उसको कहते हैं स्ववासना, साधारणीकरण। इसको साधारणीकरण भी जीव गोस्वामी ने कहा है, स्ववासनामयी और साधारणीकरण। साधारणीकरण मैंने एक आदमी के घर में कोई मर गया और वो फूट फूट करके कोई रो रही है, उसकी पत्नी जब फूट फूट करके रोने लगी तो जो उसको समझाने के लिए घर में गई तो वो ऐसी वासना उसके दोनों एक बराबर के, वो भी रोने लगा। आज मैं कहीं गया, एक आदमी एक महिला गिर गई हैं, भक्त उनके पैर टूट गए हैं सत्राड़ी जी के घर से, और उनको ये सब लगाया गया है प्लास्टर प्लास्टर और सब, बड़ी दुखी थी। और मैं गया तो ना जाने कैसे उठ करके उठ कर मैंने खड़ी होकर वो बिछौने पर, और हमारे पैर को और हमारे ये सब को पकड़ करके एकदम रोने लग गई। हमने छोड़ दिया, चाचा जो इसकी इच्छा हो कर ले। पैर पकड़ करके ऐसे जैसे बेटियां पिताजी को पकड़ करके रोती हैं, उसका रोना देख करके हमारे भी आंसू निकल आए। इसको कहते हैं साधारण। आप भी रोने लगे? ओहो, इसका नाम है साधारण। आदमी क्यों रोता है? यह हंसता किस लिए है? जब दोनों के विचार, दोनों के हृदय एक समान लेवल में आ जाते हैं तो उनके भावों को समझ करके ये भी वैसा ही है। इसको कहते हैं साधारणीकरण। इसी का नाम अष्टयाम लीला है। कृष्ण की लीलाओं में जो कृष्ण के परिकर हैं, कृष्ण की जो सेवा कर रहे हैं, उनकी वासना में अपनी वासना ऐसे मिला करके बराबर कर दी, साधारणीकरण हो गया कि अब दोनों का हृदय करीब करीब एक जैसा हो। यहाँ पर बैठा हुआ है किंतु अब क्या सोचता है, ऐसे ही सेवा कर रहा है, तन्मय होकर के दो चार पाँच दस घंटे तक ऐसा बढ़, और अधिक यदि हो जाएगा तो इसी को कहते हैं समाधि। समाधि माने क्या? सम धी माने क्या? हृदय। हृदय यही साधारणीकरण है। समधि बराबर उनका हृदय हमारा हृदय दोनों एक हो जाता है। कृष्ण के साथ में अधिक मत करो, समाधिकरण कृष्ण के साथ में नहीं होगा, अद्वैतवाद हो जाएगा। समाधिकरण किसके साथ में करना है? जो उनके परिकर हैं, सीताम सुबल नंद बाबा यशोदा गोपियां गो गायें वहां के पक्षी कीट पतंग, उनके साथ में करना है। जो उनकी सेवा करता है, जिसके प्रति हमारा लोभ है सेवा, उनके साथ में समानीकरण करो। समानीकरण में वही मत बनो ना तो ये भी अद्वैत बात हो जाएगा। क्या करना है? एक जैसा, जैसे वो सेवा करते हैं वैसे हम लोग तन्मय होकर के उनकी सेवाओं को करें। गोवर्धन परिक्रमा करो तो किसी भाव के साथ में करो, बातचीत इधर उधर की चर्चा करते हुए, अरे वो तो बेकार की है, ये ऐसा है, हमने ऐसा किया, ये समझ करो। देखो ढूंढो रूप सनातन कैसे कृष्ण को गोपियों को ढूंढते थे। अंततः ये तो करो कि यहाँ पर ये गोचारण करते थे, यहाँ पर उनका भी सेक हुआ गोविंद कुंड में, कुसुम सरोवर में गोपियां फूलों को चैन करके माला बनाती थी, और कृष्ण के साथ में अंतरंग लीलाएं हुआ करती थी। आ वो सब चीजें हमारे हृदय में प्रकट हुई। मानसी गंगा में आए, वहां पर गोपियां घी की गगरी लिए हुए, मक्खन की गगरी लिए हुए आ रही हैं, और कृष्ण उनसे ठिठोली कर रहे हैं। वो सब ठिठोलियां हमारे हृदय में प्रकटित हों। ऐसे ही जहां जहां पर जाएंगे उन चीजों को स्मरण करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, हृदय में उन सबको स्मृति लाते हुए परिक्रमा करेंगे। ये परिक्रमा है। और अन्यथा जल्दी से जल्दी दौड़ते हुए एकदम रेस में चले जा रहे हैं, खाते पीते बड़े आराम के साथ में चले जा रहे हैं, और जल्दी से जल्दी करना है तो ये ऐसे होगा जैसे जल्दी से जल्दी हमको नाम पूरा करना है 50,000 या 25,000, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी पर समय है, पर ध्यान है, भाव और उसके गुणवत्ता पर नहीं है। हमको कैसा करना चाहिए? हर नाम हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे राम, लीला स्मरण के साथ में अनर्थ निवृत्ति की लीलाएं हैं, जैसे पुतना इत्यादि का वध है उसको लो, उसके अंदर में जो कपटता इत्यादि थी हमारे अंदर में है, हे प्रभु आपने पुतना का ये किया था, हमारा भी ऐसा कर दी, हमारे हृदय को निर्मल बनाइए। जहां पर जा रहे हैं वहां पर स्थिति देखते हुए वहां की लीलाओं का स्मरण होता जाए, दूसरों से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं, मन में वो सब लीलाएं छोटी होती जाए। इसका नाम है समानीकरण। हम मंत्र जप के करने के समय में चुपचाप ऐसे बैठ जाते हैं, शरीर तो ऐसा बैठा और मन विषयों का चिंतन में लग गया, इधर उधर भटक गया, हमारा चित्त मंत्र में समानीकरण नहीं हुआ, साधारणीकरण नहीं हुआ, मंत्र में अपने चित्त को लगा करके चिंतन करो, उसमें किसी से बोलने की चलने की कोई जरूरत नहीं। मंत्र को कृष्ण समझो, कृष्ण मंत्र कृष्ण है। विशेष करके गोपी जन, ये गोपियों के बल्लभ है तो गोपियां भी रहेंगी। कामदेव का मंत्र है, काम गायत्री है, महाप्रभु का मंत्र है, इसमें एक कर दो मन को समान, कोई चिंता दूसरी नहीं रहे, संसार का प्रॉब्लम वहां नहीं आए, वो अपने आप दूर हो जाएगा। वो तो प्रॉब्लम तो रहेगा ही संसार का, इसलिए निश्चिंत रह करके करेंगे। कैसे रहेंगे? यदि तुमने मकड़ी का जाल बना दिया तो उसमें उलझोगे ही। मकड़ी का जाल माने क्या? तरह तरह की चिंताओं के लिए तरह तरह की चीजें, हमको यहाँ जाना है, ये करना है, ये करना है, बगीचा बनाना है, मंदिर बनाना है, और करना है, और करना है, इधर करना है, हजार लाख शिष्य हो गए हैं, क्या होगा? उन सबका तो प्रॉब्लम आएगा ही, चित्त स्थिर नहीं हो सकेगा। इसलिए चित्त स्थिर करने के लिए करना चाहिए, चित्त स्थिर करके उनका एकदम चिंतन का एक समानाधिकरण हो, इसलिए ये गोपियां ये कर रही हैं। माथुर माथुर पत्नियां, मथुरा की जादू पत्नी, गोपियों में चित्त को एक कर दिया है और चिंतन कर रही है। गोपियां ऐसे प्रत्यक्षवत देख रही हैं, जो गोपियां ऐसे कर रही हैं, देख रही हैं, क्या देख रही हैं? जादो हने वहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो ओखन मार्जनादो गायन्ति चैनम अनुरक्त धियो अश्रुकंठ धन्ना ब्रजस्य उरु क्रमचित्त जाना। ये करें कि ब्रज की स्त्रियां धन्य है, उरु क्रमचित्त जाना, उरुक्रम की उरुक्रम, जिनके उरुक्रम हैं। क्रम माने क्या? एक क्रम माने होता है पैर, उरुक्रम त्रिविक्रम, और उरुक्रम जिनके वैभव उरु हैं, जिनकी लीलाएं ये सब बड़ी मधुर बड़ी सुंदर हमें ये क्रम लीलाएं, ऐसे जो उरुक्रम जो है सर्वशक्तिमान अखिल रसामृत सिंधु जो कृष्ण हैं, चित्त जाना उरुक्रम चित्त जाना, उरुक्रम की चित्त ज्ञान है। चित्त ज्ञान माने क्या? मनोरथ जिसको कहते हैं, मनः रथ, जिसका मन है रथ, किसका? उरुक्रम का। उरुक्रम की सब समय चिंता करती हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता जो उरुक्रम जो कृष्ण हैं, उरुक्रम में का दिया जाएगा। जैसे राष्ट्रस्थली में कैसे तीव्र गति से नृत्य करते हैं और क्षिप्र गति से ऐसे मालूम होते हैं जैसे करोड़ों कृष्ण बन गए, ये उरुक्रम है। उनकी मधुर मुधर लीलाएं ऐश्वर्य से भी बड़ी उन्नत किस्म की हैं, इस चीज को समझना चाहिए। यह है क्रम। तो उरुक्रम जो है अनंत है, अखंड है, विभु हैं, तो भी गोपियों का चित्त जो इसके अंदर में है, इसके ऊपर में वो चढ़े रहते हैं। चढ़े रहने का मतलब क्या? चढ़ाना बतलाऊं? अभी एक सांप निकल आया और यहां पर झट ऐसा फण करता हुआ काला सा इसी के बीच में घुस गया, कथा कथा हो जाएगी खत्म। हम कहते भी रहेंगे क्योंकि हम ऊंचे पर हैं, हमारे यहां तो आएगा नहीं, घर में घूमेगा। उसमें चित्त किस कहां चला गया? वो सांप आपके चित्त पर चढ़ गया, उतरेगा नहीं जब तक यहां से कहीं से भगा न दिया जाए या उसे मार न दिया जाए, किंतु चित्त पर वो चढ़ा रहेगा। यहां तक कि एक घंटे तक यहां से जाने के बाद घर में भी वो चढ़ा रहेगा वो सांप। कहेंगे आज तू वहां पर गौड़ी मठ में एक सांप निकला और ऐसे ऐसे कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, और यहां पर ऐसे देखेंगे अरे कहां गया, इधर भागेंगे भी कि तुम नजर कहां रहेगी, भाग रहे हैं कि तुम्हारी नजर रहेगी सांप पर, भी शैले सांप, वो जैसे करता है ऐसे फर्श पर उस पर, ये चित्त पहचान है। ऐसे कृष्ण, ये तो एक बतलाया, ये तो भीषणतम भाव है, रौद्र भाव। किंतु कृष्ण का है मधुर भाव, कृष्ण उनके चित्त पर सब समय चढ़े आरूढ़ हुए रहते हैं, इसलिए गोपियों का चित्त हो गया क्या रथ और कृष्ण हो गए उस पर आरूढ़ होने वाले सवार। अथवा इसका उलाट दो, कृष्ण ही जिनके रथ हैं, कृष्ण का चित्त ही जिनका रथ है, कृष्ण के चित्त पर सब समय गोपियां चढ़ी रहती हैं, चाहे वो द्वारका में हो तो भी रो करके गोपियों का स्मरण करते हैं, चाहे गोचारण लीला कर रहे हो सखाओं के साथ में गायों के साथ में, किंतु उनका चित्त कहाँ है, कुछ इधर उधर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहाँ से गोपियां आ गए, कैसे हमारा मिलन, बस दिन भर रात भर उनके इतना विश्व का सृजन इत्यादि सब उनके अंशों के द्वारा होता है, उनको कुछ वो सारी व्यवस्थाएं पक्की हैं, चिरस्थायी व्यवस्थाएं बना रखी हैं, उनके अंश के अंशों से कलाओं से विकलाओं से ये सब कुछ होता रहता है, उनके एक भ्रूर भंगी से ये सब कुछ हो जाता है, किंतु असल में उनका चित्त कहाँ रहता है, गोपियों के चिंतन में लगा रहता है। इसलिए रात में कभी सोते समय द्वारका में कहते राधे ललिते तू कहाँ है, यशोदा मैया तू कहाँ है, इस प्रकार से कहते हैं। कृष्ण के प्रेम का था नहीं पाती हैं रुक्मणी सप्तभामा इत्यादि, हम इतने लोग मिल करके भी कृष्ण का हम लोग इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। और ये सप्त में राधे राधे गोपी गोपी ये कहा करते हैं। महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण करना चाहिए थे, राधा जी के आवेश में आवेश होने के लिए उनका जन्म हुआ है, महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है, किंतु एक दिन वो गोपी गोपी कहने लगे, इसलिए गोपी कहने लगे, उनके चित्त पर गोपियां आरूढ़, इस लीला में भी इसलिए गोपी गोपी कह रहे हैं, लोग उसके भावों को समझ नहीं सके, लठिया लेकर के उनको मारने के लिए आए, इसलिए इसको कहते हैं। हम लोगों का साधो का चित्त इतना तो नहीं होगा, किंतु प्रयत्न तो करना ही होगा, जो प्रयत्न नहीं करता वो साधक नहीं है, जो इसके लिए प्रयत्न करता है कि हमारा एक उसमें चित्त निविष्ट हो जाए, कैसे होगा, यदि लाख प्रकार के कार्य आरंभ नहीं करेंगे तो होगा, इसलिए बहु आरंभ ये भक्ति का बाधक है, बहु आरंभ जिनके लिए शक्ति है कृष्ण के लिए ये सब कुछ नहीं है, महान आचार्यों के लिए ये सब कोई बात नहीं है, किंतु छोटे किस्म के साधकों के लिए बहु आरंभ करेंगे तो हमारी भक्ति नष्ट होगी। आप भक्ति चाहते हैं न वो चीज चाहते हैं, क्या चीज चाहिए आपको, इस पर विचार कीजिए, इसलिए यदि वो चाहिए तो इसको पढ़ो, इस पर विचार करो, इसके भीतर में प्रवेश करो, और जैसा इनका है जैसे ये कर रही हम भी वैसे ही करेंगे। तो कैसे बना हुआ इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, जा दोहने वहने, गैया का दोहन भी तो है ना, बच्चों को खिलाना पिलाना लाड़ प्यार करना है, पति भी हैं उनकी सेवा भी करना है, घर में झाड़ू फाड़ू देना है, मैं बहुत भजन कर रहा हूँ मुझको यहाँ पर झाड़ू देने का समय नहीं है, मैं कैसे झाड़ू दूँ, मैं अर्चन कर रहा हूँ मुझे समय नहीं है कि और सब काम देखो, कोई वैष्णव नहीं देखा, बगीचे का रखवाली कैसे हो, फूल नहीं आएगा तो अर्चन होगा, फूल की जरूरत है कि नहीं, फूल की भी जरूरत है, तो फूल के लिए हम लोग कोई चेष्टा नहीं करेंगे तो आएगा कहाँ से, तुलसी भी तो ठाकुर जी के अर्चन के लिए चाहिए, आएगी कहाँ से, मुझको वो समय नहीं है, वो समय खाने का समय है प्रसाद का, तो ये तो हमारा प्रधान कार्य है प्रसाद सेवा, ऐसा नहीं, सब कामों को भगवान की सेवा समझते हुए कैसे भजन करना चाहिए ये यहाँ पर दिखला रहे हैं। घर में बच्चों का रहना भक्ति के लिए बाधक है, वो हाथ को कहाँ की करेंगे और भजन करेंगे तो आ जाएंगे यहाँ पर, घरों में झाड़ू देते रहने के लिए हम आए हैं घर छोड़ करके, किस लिए आए हम, अरे घर में झाड़ू देना होता तो मैं घर ही में रहता, यहाँ पर आने की क्या जरूरत है। भक्ति विनोद ठाकुर से लोगों ने शिकायत की, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज सिद्ध, हम लोग घर बार को छोड़ करके आए हैं भजन करने के लिए, अष्टकाली लीला का स्मरण करेंगे, सब समय चिंतन करेंगे, हरिनाम करेंगे, और बाबा जी कहते हैं कि बगीचे में फूल लगाओ बैंगन लगाओ और सब काम करो, झाड़ू दो यहाँ और सब काम करो, साफ सुथरा रखो, तो इसके लिए तो हम लोग आए नहीं। उन्होंने कहा जैसे तुम अभी यदि नहीं करेगा तो तुम्हारा मन विषय में जाकर के दो दिनों में स्त्री में आसक्त होकर के डूब मरेगा। इसलिए ये जैसा कहते हैं ये सिद्ध महात्मा है जैसे भजन करके आगे बढ़े हैं तुमको बतला रहे हैं करो और नहीं तो मरेगा। घर के काम जैसे गो दोहन करना, कूटना मूसल से या ढेंकी से कूटना, चक्की से आटा पीसना, दही के मंथन करना, घर का मार्जन करना, ये सब काम है, ये तो भजन में बाधा है। भजन ये गोपियों ने कैसे इसको अपने भजन के अनुकूल बना लिया, ऐसे हमको ये संसार में साधक की स्थिति में रहते हुए करना पड़ेगा। अभी तुम्हारी समाधि नहीं लगेगी, एक मिनट के लिए भी समाधि नहीं लगेगी, तुम्हारा चित्त विक्षिप्त है इधर उधर, क्योंकि तुमने कांटे पूर्व जन्म में बो दिए हैं। फूल कहां से आएगा, कांटा क्या, कर्म ही ऐसा किया है जिसमें कि कुछ सुख और दुख आएगा ही, उनको भोगना ही तुम्हें पड़ेगा। रो करके भोगो अथवा हंस करके भोगो। रो किस लिए आते हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार से, इस जन्मों के संस्कार से भी आते हैं। शरीर की उपेक्षा करो, देखो अभी रोग आ जाएगा, अभी बर्फ में स्नान करो और बर्फ का पानी पियो, देखो जो जुकाम आ जाएगा। इसके लिए पूर्व जन्म के संस्कार की आवश्यकता नहीं है। बीड़ी सिगरेट खूब पियो, चाय पियो, गांजा भांग पियो, देखो जो कैंसर और टीबी होगा। इसमें पूर्व जन्म के संस्कार की बात नहीं, ये तो इस जन्म की ही संस्कार। अभी रोटी बनाओ और चोट भोग दे करके खा लो, ये इस जन्म का संस्कार है, इसको पूर्व जन्म के संस्कार की कोई भी आवश्यकता नहीं। और कुछ ऐसे हैं जैसे ये नहीं करने पर भी रोग आ गया, बुढ़ापा आएगी, किसी को बुढ़ापा 50 वर्ष में आ जाती है, किसी को 60 में, किसी को 100 वर्ष में, किसी को 150 वर्ष में आती है। ये सब संस्कार पूर्व जन्म का है। किसी को आंख, किसी का आंख 40 वर्ष में ही खराब हो गया, किसी का जन्म से ही खराब हो गया, ये तो पूर्व जन्म का है। और कुछ इस जन्म के संस्कार से भी हो सकता है। तो हमें अपने संसारी कर्तव्यों को समस्याओं में रहते हुए भी उन समस्याओं को अनुकूल बनाना है, झाड़ू देना है। इसको मंदिर समझो, भगवान मंदिर है। यहां पर झाड़ू देने से क्या होगा, हमारी अविद्या दूर हो जाएगी और ब्रज में हमें स्थान मिलेगा। ब्रज में झाड़ू देने का भी हमको सौभाग्य होगा, कुंजों में, लताओं में। इसलिए ये सबको करना चाहिए। कैसे करेंगे, जैसा ये कर रही हैं। कैसे, सवेरे उठी और उन्होंने उठ करके ही देखा कृष्ण की चिंता करने लगी। अभी हम लोग उठते हैं तो समस्याओं का पहले चिंतन होता है, ये बाकी रह गया कल का, ये क्या होगा नहीं होगा ये सब, और उसी समय में कार्य निर्धारित सारे दिन के लिए कर लेते हैं। ये करना है, इनसे मिलना है, ऐसा करना। वैष्णव का क्या है, उठते ही वो देखते हैं, हाय हाय हमारा भजन नहीं हुआ, कैसे करें। सवेरे उठते ही बस गुरु परंपरा कर दी आरंभ, उनको प्रणाम किया, जय दिया, गुरुवस्तक पाठ किया, वैष्णवों का, चैतन्य महाप्रभु का, ये सब में लग गए और हरि नाम करते हुए फिर लग गए चिंतन में। उनको संसार की उस समय चिंता यदि रहे भी तो वो दूर रहे। तो वैसे ही ये सवेरे उठा, उठ करके कृष्ण का चिंतन करने लगी, कृष्ण कहाँ हैं, कैसे मिलन होगा, कैसे क्या होगा, और उनकी लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। और चिंतन करके क्या कर रहे हैं, जा दो हने वहन ने, गाय को दूना है, ने? ये कौन कर रहा है, मथुरा की स्त्रियां कर रही हैं। सवेरा हुआ, गायें रंभा रहे हैं, बछड़ों को खोलो, बछड़ों को बांधो, ये ले आओ, हणिया ले आओ, कलश ले आओ, दूध धोने के लिए लाओ, इसे छोड़ दो, इसे बांध दो, इसे ऐसे करो, हो हल्ला होने लग गया और गायें रंभाने लगी और बछड़े सब खूंटा से छोड़ा और वो कुत्ता हुआ गायों के थन में लग गए। और वो दूहने वाला भी स्वामी घर में नहीं है, स्त्रियां ही दूह रही, गोपियां दूह रही, ये ब्रज में, इनका चित्त कहाँ गया? ब्रज में। और जाकर के देख रहे हैं ये सुंदर सुंदर गोपियां रंग बिरंगी पोशाक धारण किए हुए, और बछड़ों को हटा करके फिर वो धोने लगी और क्या कर रही हैं?
गोविंद
गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती। प्रत्येक काम में धो रही है गायों को, हाथ तो वहां है, हाथ काम भी कर रहा, कैसे? पूर्व जन्म के या इस जन्म के अभ्यास से। किंतु चित्त कहाँ है? गोविंद दामोदर माधवेती। ऐसे झाड़ू देते समय चित्त को कहाँ ले आओ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। झाड़ू दो कोई हर्ज नहीं, चित्त तुम्हारा कृष्ण के पास। राधे जय जय माधव दई, राधे जय जय माधव दई, गोकुल तारुणी मंडल महीते, गोकुल तारुणी मंडल राधे जय जय माधव। करुणां करो मई करुणा भरीते, करुणां करो मई करुणा भरीते, करुणां करो मई करुणा भरी, सनक सनातन वर्णित। राधे जय जय माँ। दूर रही है, हम झाड़ू दे रहे हैं, ठाकुर जी के लिए माला गंथन कर रहे हैं, रसोई के लिए सब्जियां मान्य कर रहे हैं, घर में तो यही काम है, और कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। उन गानों में जो चीज है ठीक वही चिंतन कर रहे हैं, मानो आंखों से देख करके कर रहे हैं। ये मथुरा की नागरियां और देख रही हैं, वृंदावन में जाकर के अपने आंखों से देख रही हैं, अनुभव कर रही हैं। गोपियां दूध दो रही और कर रही हैं क्या? गोविंद दाम कोई अवहनने अहनने, जरा उठ बात करो तो जल्दी जल्दी बात करो, अहनने कूटना मुसल से कूट रही है क्या? गेहूं, ये जौ होता है ना, जौ में छिलके होते हैं, छिलके को उतार करके तो उसको किसी काम में लगाते हैं, उसको भून करके या जैसे हो उसका आटा पीसते हैं, सत्तू पीसते हैं और काम करते हैं। चावल को भी ऐसे नहीं, चावल को भी फिर थोड़ा सा कूट लेते हैं। तो उस समय में दो गोपियां एक उधर से और एक इधर से, धम और उधर से धमाधम, धम धमाधम कर रही है। ताल से हाथ में चूड़ी है, सोने के चड़ी कंगन है, वो झन्न बजती हैं, और इधर में ताल पड़ा उसका धम धमाम। धम माने क्या? धिक तान, धिक तान। उनको धिक्कार है जो कृष्ण का स्मरण महाप्रभु जी का स्मरण नहीं करते हैं, उनको धिक्कार है। ऐसे करते हुए ताल स्वर से गायन कर रही हैं, कृष्ण का स्मरण कर रही हैं, है ना? विक्रे तु कामा अखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादि कंग मोह बसा दवोचत, गोविंद दामो धर्माधवे। क्या स्वर? गोविंद दामो धर्माधवे, विक्रे तु कामा अखिल गोप कन्या बिखरे तुकामा मुरारी पादर पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोह वशाद् वोचत दध्यादिकं मोह गोविंद दामो धर्माधवेति। गोपियां विक्रेत कामा खिल गोपकन्या, गोपियां अखिल गोपकन्या, अखिल माने कोई बाकी नहीं, समस्त गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, मुरारी के चरणों में अर्पित चित्त वृत्ति, वो चित्त वृत्ति अब अपनी नहीं रही, किसमें रही, मुरारी की चिंता सब समय वो कर रही, इसलिए विक्रेतु कामा माने क्या, विक्रेतु कामा माने क्या, आई तो विक्रेतु कामा कामा अखिल, अरे भाई उसमें अखिल इसमें ये भी होगा कामा अखिल, तो भी कामा ही अखिल होगा, ऐसे समझो वो आकार और आकार उसमें उसका अलग अर्थ हो जाएगा, उसका अलग हो जाएगा। तक कामा माने गोपियों की जो तो कामनाएं हैं उनको तो कलश में भर लिया, हृदय में भर लिया है, उसको भी क्रेतु कामा उन कामनाओं को लेकर के जा रही है, किसे कैसे उनसे मिलन होगा, ये कामनाएं, ये मत सोचो जो दही बेचने के लिए कोई भी गई, उस कभी दही बिक्री कार्यवाही हमारे भारतवर्ष में नहीं था, हमारे समय में नहीं था, दही या मट्ठा ये बेचा नहीं जाता था, अब आजकल ये बेचा जाना लगा, ये तो घरों घरों में वहां पर नंदगांव में एक छाछ का कुंड है, वो तो ऐसे ही फेंक दिया है, कौन खाए, जहां पर दूध और दही और मक्खन के की नदियां बह रही हैं वहां पर कौन बेचेगा और कौन लेगा, ये सब नहीं, बिक्रे तुकामा ऐसे बेचने के लिए कौन लेने वाला है, चित्तवृत्ति दध्यादि को मोह बसात, अरे दधियों के बहाने दधि बेचने के लिए नहीं, दधि के बहाने कहीं ले जा रहे हैं, उधर मत सोचना कभी ये राधा जी दधि बेचने के लिए निकलती थी, विश्वभानु की लाडली कुमारी जिनके यहाँ कितनी लाख गायें हैं, 11 लाख गायें हैं और उनके घर में रिद्धि सिद्धि इत्यादि है, और वो दही बेचने के लिए जाएंगी, यदि किसी की कल्पना है तो वो ठीक मत समझो, उसका भाव अर्थ दूसरा होगा, इसलिए गोपियां कभी भी दही बेचने दूध बेचने के लिए मथुरा नहीं आती थी, बल्कि कभी भागुर ऋषि ने यज्ञ किया गोविंद कुंड में या कहीं भी, तो दही दूध रार मचती थी उसी समय में, इसलिए विक्रेत कामा इसका अर्थ बदलना पड़ेगा, वैसा नहीं अर्थ तो ठीक है, कामा में उसने लेकर के लगा दिया है, काम में लगा दिया, गोपियों का काम क्या है, प्रेम इति प्रथा मदर, ये गोपियों का काम को प्रेम कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये मत समझना कि गोपियां दही दूध और मक्खन बेचने के लिए जा रही हैं, कभी ऐसा मत समझो, मथुरा में राधा जी आएंगे दही बेचने के लिए या बरसाने में, लेगा कौन, घर ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कि दही और मक्खन चोरी करने के लिए कृष्ण जाते थे, ये बात तो ठीक है, इसलिए ये बहाना मात्र, विक्रे दध्यादिक मोह बसात गोचर गोविंद दामो धर्माधुरे कुदुःखलेशं धृततण्डुलं च संघण्टयन्तो मुशलै प्रमुग्ध उदुखले संभितान्तुलञ्च संहर्षयन्तो मुशलै प्रमुग्ध गायन्ति गोप्य जनितानुरागा गायन्ति गोप्य जनितानुरागा गोविन्द दामो धर्माधवेति गोविन्द दामो कोई घर में शुभ पक्षी को पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है? सवेरे उठ करके पढ़ा रही है काशित करम भोज पुटे निशन्नम क्रीड़ा सुकुम किं सुख रक्त टुंडम अध्यापया मात सरोहा गोविंद दामो धर्माधवेदी। इसी तरह से दोहने खनने अवहन ने माने मूसल से पूछने मथनोपलेप मथन दधि मंथन कर रही है, चित्त एकदम तन्मय हो गया कृष्ण में, कृष्ण के यशोदा के सुत की यशोदा सुत की बाली केली का स्मरण करते हुए, बाली केली माने क्या
बचपन के जो लीलाएं हैं
इसमें जा रहे हैं। थोड़ा सा दूर गए जब चौकट के पास आए तो किसी को आते देखे देखा या कुत्ते को गाय को बैल को या किसी आदमी को देखा और डर के मारे चौंके और चौंक करके बड़ी तेजी के साथ फिर करके मैया के पास में आ रहे हैं। कभी काक को देखा, कृष्ण खा रहे हैं मक्खन और देखा कि काक या बंदर आए और बंदर को देखा वहीं से रोना आरम्भ किया डर के मारे और चौंक करके फिर वहां से जल्दी से लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते भागे। मैया ने कहा जी क्या हो गया, जल्दी से गोदी में उठा करके कृष्ण किसी समय छोटे बच्चे जन्मदिन कृष्ण यशोदा जी ने कहा एक बछड़ा ले आओ उसकी पूजा कराएंगे तुमसे, तो कृष्ण गए पकड़ा तो वो जब लाते हैं तो वो आता नहीं, विशेष करके जबकि आगे खींचते हैं तो पैर को अड़ा देता है आता नहीं और पीछे से खेलते हैं तो आगे और आगे जब चलते हैं तो वो पीछे की तरफ में भागता है, उल्टा वो चलता है नहीं आ रहा, किसी प्रकार से फेर ठाल करके गिरते पड़ते ले आए। यही घर में घुसे देखा ऊपर में मक्खन, उन्होंने उसको खड़ा करके सोचा कि इसी के ऊपर में जरा चढ़ करके और यही थोड़ा सा उसका स्पर्श किया स्पर्श करके बछड़ा कूदा और भाग गया और वो पकड़े हुए ऊपर में रह गए और मैया 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 चिल्लाने लगी। मैया कहिए तुमको अभी थप्पड़ देती हूँ। ये यशोदा का बाल सूत के लिए तो इस तरह से स्मरण करते हुए मंथन कर रही हैं और गोविंद दामो धर्माधवे। इनका यह काम भगवान के भजन में बाधक नहीं है, उसी प्रकार से यहाँ का झाड़ू देना सब्जी अमान्य करना रसोई अमान्य करना या अपने घर में भी ठाकुर जी को प्रधान बनाओ राधा कृष्ण और उनकी सेवाओं को करते हुए इस प्रकार से लगा दो तन्मय हो जाओ। प्रेंखना अभी बच्चे कुछ रो रहे हैं, उनको पलने में झुला दिया और झुला करके थप थप करने लगी, थप थप ही देने लगी, सो जाओ ये नहीं कहती, क्या कहती हैं गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति। थप थपी चल रही है स्वर के साथ में लय के साथ में और इधर में कीर्तन भी हो रहा है और बच्चा धीरे धीरे सो गया अपने काम में तन्मय हो गई। अब ये बाधक कहाँ रहा, कोई भी बाधक नहीं, इसे घर वालों से लड़ो मत अपने मन से लड़ो, उनको ऐसे कामों में लगाओ। ये घर पाठशाला है, पाठशाला में शिक्षित हो करके पास करके तब यहाँ आओ और वहाँ पर सीखा कुछ नहीं यहाँ पर चले आओ तो फिर वही बखेड़ा या लखेड़ा लगा रहा, नहीं सीख सकोगे, सेवा काम में नहीं लग सकते, इसलिए इन सब चीजों को देख करके इनसे शिक्षा लेना चाहिए। प्रेंखना भी उदित ओखन मार्जना भी घर में लीप रही है, आजकल लीपने का काम नहीं, गोबर और मिट्टी पानी मिला करके या गोबर के साथ में मिट्टी, इतना सुंदर मिट्टी का घर चलने पर भी उसमें कुछ बल आएगा शरीर में, गोबर के साथ में लीप रही है और चिंतन क्या कर रही है, गोविंद दामो लिप लिप से ऐसे तन्मय हो गई, इतने में सचमुच में गोविंद या दामोदर कहीं से आ गया, आकर के इनका चोटी पकड़ लिया, मैया मैया कहने किसी भी गोपी को, किसी माने प्रौढ़ा को, ये सब उनके लिए। इस प्रकार से गायन्ति चैन च एनम अनुरक्त धियो, अनुरक्त धियो माने क्या, पहले राग, राग से हुआ अनुराग और अनुराग से हुआ अनुरक्त, राग किसको कहते हैं, जब चित्त की वृत्तियां बिना किसी हेतु के कृष्ण के चरणों में निरंतर लगती रहे तैज धारावत अविच्छिन्न गति से, उसको कहते हैं राग। स्वाभाविक रूप से ये होगा किसको, रागाश्न का लोगों को होगा, रागानुगा को नहीं होगा, उसके लिए प्रयत्न कर रहा और उनका जिनका स्वाभाविक रूप में है चित्त की वृत्तियां कृष्ण की सेवा में लगी हुई हैं 24 घंटे, इसलिए रागात्मी का भक्ति की यहाँ पर बात होती है, उसका अनुगत होकर के हम कुछ जो करेंगे उसको कहेंगे, उन्होंने अंतर है। कुछ लोग नहीं समझते, रागानुगा को ही रागात्मी का कह देते हैं, समझ देते हैं, भूल हो जाते हैं, नहीं ऐसा, यह गोपियों के लिए नित्य सिद्धा गोपियों या कृष्ण की राधा जी की काय विवाह गोपी और रागानुगा अभी इस चीज को पाने के लिए इस जगत में अभी आरंभ कर रहा है साधन भजन, तब इसको कहते हैं रागानुगा। तो एनम अनुरक्त धियो अश्रु कंठ है, आंखों में आंसू भरे, आंसू छल छला रहे हैं या निकल रहे हैं, अनुरक्त धियो बताया ना, तो यह हुआ राग जिसके हृदय में है वो तो रागानुगा हुआ, ऐसे जो अनुरक्त रंग गया है जिनकी आत्मा ऐसे राग से, इसलिए उसको कहते हैं अनुरक्त, कपड़ा सफेद लाल रंग में उसे अच्छी तरह से रंग, यह अनुरक्त हो गया, ऐसे जिनकी चित्तवृत्ति 24 घंटे उसी में अनुरक्त है इस प्रेम में, और कोई दूसरी चीज ही नहीं है, अनुरक्त जियो माने बुद्धि जी। अश्रु कंठो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कब हमारा दिन होगा, नयनं गलदाश्रु धारया बदनं गदगद रुद्धया गिरा कुलकर्मेकितं बपुः कदा तो नाम ग्रहणी भविष्य। यह कब की स्थिति है, अभी भाव यह रागानुगा की स्थिति, और दूसरा इसके बाद वाला जो श्लोक है वो तो महाभाव की स्थिति, और इसके बाद की जो अंतिम जो श्लोक है वो माता नक्ष और इसको ऊपर में चला जाएगा, उससे भी ऊपर। धन्या ब्रज पुरुषम चित्त जाना, हाँ ये ब्रज की स्त्रियां जो हैं वो धन्य हैं जिनका चित्त उरुक्रम में ऐसे लग गया है, जो उरुक्रम का ये रथ बन गया है उनका मन, अथवा उरुक्रम कृष्ण ही देख रहे हैं, कुटिया ऐसे सब कामों में लग्न है, कोई काम कर रहे हैं उसी में हमारा नाम लेकर के चित्त में हमारी लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, घर में है शाम हो गई जहां सुना उनका चित्त एकदम अस्थिर हो गया, शाम होना माने क्या, ब्रज में शाम हो गई ये जहां आवाज आई, विभिन्न लोगों की विभिन्न प्रकार की धारणाएं हुई, ब्राह्मणों ने वेद उपनिषद इत्यादि का मंत्र आरंभ किया और संध्या आनिक में जुट गए, घरों में आरती होने लगी, आरती होने का अब समय हो गया, शाम हो गई, गायें आ रही हैं लौट कर, कृष्ण भी आ रहे हैं, बच्चों ने देखा कि कृष्ण आ रहे हैं तो निकले घर, और गोपियों के लिए शाम हो गई क्या, जहां शाम हो गई बस श्रृंगार जो कर रही थी वहीं ऊपर खत्म हो गया, उल्टा फुल्टा जैसे कर करके अपने दरवाजों के पास में कुंजों में छत पर अट्टालिकाओं पर विभिन्न, जसोदा मैया के लिए शाम हो गई मैंने क्या, अब आरती सजाओ, अब कृष्ण आ रहे हैं उनकी बलैया लो उनकी आरती उठा, इसी तरह से सबके लिए। धन्या ब्रजस्य उरुक्रम चित्त जान, उरुक्रम की चित्त की ध्यान है, इनका चित्त कैसा है, उरुक्रम के लिए रथ के समान है जिस पर कृष्ण तत् समय आ रहे, अथवा कृष्ण भी गोपियों की मनोभाव और स्थिति जान करके सत्समय गोपियों की ही चिंता करते हैं, द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, द्वारका में कृष्ण है, वृंदावन में भी कृष्ण है, दोनों जगह एक साथ में है कि नहीं है, तो उनको द्वारका वाले को ही चिंता क्यों हुई, वृंदावन वाले कृष्ण को चिंता हुई? क्योंकि उनसे उनका संपर्क है, इसलिए छटपट छटपट करने लगे और कैसे जाकर के उसकी रक्षा करें, इसलिए आने की तैयारी है किंतु आ नहीं सकते, थोड़ी सी कोई कसर रह जाती है। कृष्ण को बुला रही हैं किंतु फिर भी कुछ दांतों से कपड़ा रखती है, भीष्म पितामह की तरफ में देख रही हैं, पांचों पांडवों की तरफ में देख रही हैं, इसलिए नहीं आ रहे। सब जब जगत का सब अस्त्र छूट जाएगा, कृष्ण ही एकमात्र हमारे रक्षक, तो कृष्ण वहां पर तुरंत पहुंच जाएंगे। इसलिए सबकी स्थितियों को जानते हैं। विश्वनाथ चौवर्ती ठाकुर जी ने पूर्व पक्ष किया है, कृष्ण तो वृंदावन में सब समय गोपियों के साथ में क्रीड़ा में संलग्न है, उनको फुर्सत नहीं है किसी काम को देखने का। तो फिर संसार में तरह तरह के भक्त हैं जो कृष्ण का आराधना करते हैं, स्तुति पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनके लिए समाधि लगाते हैं, उनको कौन उनकी इच्छाओं को पूर्ण करता है, कौन करता है? कृष्ण करते हैं। कैसे करते हैं? अपने प्रकाश अंतर से दूसरे दूसरे प्रकारों में, और वो सर्वशक्तिमान है, इसमें रहते हुए भी उस सबकी इच्छाओं को कृष्ण ही पूर्ण करते हैं। सबके हृदय में साक्षी के रूप में परमात्मा है, किंतु कृष्ण के जो एकांतिक भक्त हैं उनके हृदय में कृष्ण परमात्मा के रूप में नहीं है, वो बंसीधारी मयूरमुकुटधारी उस रूप में है। राम का भजन करने वाले के हृदय में राम के रूप में है, साधारण लोगों के हृदय में साक्षी परमात्मा के रूप में, इस सबकी इच्छाओं को वो जानने वाले, इसलिए उनका भी चित्त गोपियों के लिए आरूढ़ होकर के रस जैसा बना रहता है। प्रातः ब्रजात ब्रजत अभिशत।